बनारस और कलकत्ता, पृष्ठ संख्या 129। जब मैं चुनार से बनारस पढ़ने आया, तब मन ही मन अपने सामाजिक स्टेटस पर बड़ा ही लज्जित जैसा महसूस करता था। गुणहीन, गरीब, गर्हित चरित्र। लेकिन साल दो साल रहकर जब काशी में कलियुगी रंग देखे, तब दुखदाई होने पर भी चरित्रहीनता में मेरा बड़ा भाई मन के मुकाबले में माश मात्र मालूम पड़ता था। माफी जलालपुर गांव वाले जिसे पाप मानते थे, चुनार वाले चरित्रहीनता, बनारस वालों की नज़र में वह रोजमर्रा था। आंखें नीचे कर चल रहे, कहावत की बहू से सास ने कहा था, बनारस वाले आंखों ही से बलात्कार करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दुछत्ती के दरवाजे से देखा था, नीचे ठठेरी बाजार में किसी परम सुंदरी रमणी के पीछे पीछे कनफटे बाबा को ताक झांक में जाते और कहा, मृगनैनी को नैन सर, बाबा जी को लाग, गयो कमंडल में चरचरानो बैराग। चुनार में चित्त या पट पातक को पीछे छिपाने की कोशिश करता, लेकिन बनारस में उसी को मजाक ही मजाक में मुश्क बू की तरह हवा के हवाले किया जाता। कैसा भी अधम पात की समाज के परम पावन की तरफ अंगुली उठाकर उसको प्रमाणित कर सकता था। पाखंडी परम, हृदय आन, मुख आन, डूब कर निगलने वाला, घौर घप। सेंटर जेल में पहुंचने पर एक बारह अपराधी जब शत शत दोबारा और से बारह अपराधियों को देख लेता है, स्वयं से कहीं भयानक तर तक उसे जो आत्मसंतोष होता है, वही संतोष चुनार से बदमाशी सीखकर आने के बाद बनारस के एक से एक प्रतिभाशाली भाग्यशाली बदमाशों को देखने पर मुझे हुआ। फलतः मन से हीनता की भावना धुलसी गई। लगा यहाँ यही सही कि करो कुछ बताओ कुछ, या करो भी बताओ भी, डरो क्यों। आलोचक ऊपरी मात्र होते हैं, चलते नहीं तो यहाँ दूसरे की खबर लेने जितनी फुर्सत है किस भले आदमी को। सामने पड़े झट से राय दी, आगे बढ़े और भूल गए सो छान छान किसी रंडे भड़वे की न मान। काशी की हवा में ज्ञान इस कदर की शंकराचार्य से वहाँ का चंडाल बहस कर बैठा था। मंडन मिश्र की मजदूरन दो चार सुना गई थी, काशी के तोते तक शंकराचार्य से संस्कृत में टर टर करने की हिम्मत रखते थे। जब मैं विद्यार्थी था तब की काशी में प्रेमवदा मजदूर में थी, चारवाक चंडाल थे, टर टर तोता रटंत श्रुतिधारी द्विज थे। अलबत्ता नहीं थे तो करुणामय सन्यासी दार्शनिक दिव्य शंकराचार्य महाराज। कुछ लोग कमजोर भी होते हैं और कुरूप भी। कमजोरी भी अगर कट वाली हो, अदा वाली, तो कलामयी हो उठती है। मेरे एक परम आदरणीय बंधु थे, अच्छे पढ़े लिखे, खासे खाते पीते, कविता का शौक, कसरत का शौक, दिल फेक यार। जवानी में एक हॉकी खिलाड़ी नौजवान की सुगठित देह देखी और फिदा हो गए। बरसों उनकी भावुकता उस देही से गिर्द भ्रमराती रही। विवाह और दो तीन बच्चे तक हो जाने के बाद जनाब की नमकीन निगाहों में दाल मंडी की एक तवायफ नाच गई। हजरत का रोम रोम गा चला, बसंत बहार ललकार ललकार। पत्नी से भी जनाब ने बतला दिया कि उनकी जान की राहत तो फला जान है। वह मुझसे उम्र में दूने रहे होंगे ज्यादा ही, लेकिन घंटे घंटे भर वह उस तवायफ के नाक नक्श के फसाने मजनू मुख बनाए गाते रहते। बात यह थी कि औकात वाले दिखने पर भी वह दिल ही फेंक सकते थे, दीरमो दाम नहीं। और वह थी रंडी, मजनू को भी खाली हाथ देख झाड़ू उठाने वाली, और नामालूम खां पर भी टेक पाते ही टकटकी दिखाने वाली। सो मेरे यार का इश्क बेकरार बसंत बहार के आगे न जा पाता। श्रीमान माशूक की तरह सज बज कर दाल मंडी जाते, क्या साजबाज, घंटे भर में दाढ़ी बनाते, आधे घंटे तक मूछों का कर्व या बांकपन संवारते, होंठ देखते, नासिका पर सपाटक हाथ फेरते, कपड़ों पर स्तरी ब्रश करके भूल जाते, फिर करते। ज्यादा समय वह पूजा में लगाते थे या अंग्रेजी बूट पर पॉलिश करने में, कहना कठिन है। इसके बाद महफिल में जिस आहिस्तगी से उन दिनों तवायफें सजा करती थी, उसी आराम से लैस होकर हाथ में छड़ी, सर पर कश्ती नुमा टोपी ओढ़े महाशय जी दालमंडी की उस तवायफ के दीदार को चलते, जेब में हद से हद रुपया 8 आने की खेरची लिए, उस वेश्या के ठीक सामने वाली पानों की दुकान पर 2 पैसों की गिरौरियां खाने के बाद, यह मेरा बांका यार 9 बजे से 12 बजे रात तक उस मंगलामुखी की तरफ देखता ही, जैसे सूरजमुखी देखते सूरज की तरफ, अनवरत एक पांव पर पुलकित गात पात पात। कहते तो नहीं थे, पर सोचते मन ही मन यही थे कि पैसे नहीं हैं जेब में तो क्या, बड़ी काया तो है, बड़ी आंखें, खड़ी खड़ी मूछें तो हैं। फिर विश्वनाथ अन्नपूर्णा दर्शन के पूरे पूजा पाठ का प्रभाव, वह सोचते कि आंखों ही से उस वार वनिता को अर्श से फर्श पर खींच लाएंगे, लेकिन पैसे ने खींचने वाली ऐसे वैसे जैसे तैसे से कैसे खींचती। मेरे मित्र के इस फोकट इश्क पर उनका भांजा खूब ही हंसता, वह भी जवान तगड़ा बनारसी था। उसने मामा जी के प्रेम को नामर्दों का प्रेम बतलाया। वह किसी दिन जब मामा जी पान की दुकान पर खड़े वेश्या को घूर रहे थे, तब 10-20 रुपये लेकर उसी रूपा के कोठे पर चढ़ गया। इसके जरा ही बाद फर्श से मामा जी ने देखा कि उनका योग्य भांजा उनके सपनों की रानी के गाल से गाल सटाए खुशहाल निहाल अर्श पर था। इस पर महाशय का दिल कुछ ऐसा चकनाचूर हुआ कि तबीयत हरी रखने के लिए हजरत ससुराल चले गए। 8 बरस से नहीं गए थे जहाँ, वहाँ जाकर क्या देखते हैं, 8 साल पहले उनकी जो साली 10 साल की थी वह अब 18 की हो गई थी। ब्याह उसका कई वर्ष पूर्व हो चुका था, लेकिन आराम से उस पर निगाह बनारसी रसज्ञ की अब पड़ी थी। ओहो, इनका नक्शा वही है जो उस वेश्या का, दोनों ही जैसे गुलाब के फूल। इस फर्क के साथ कि वेश्या का रस सूख रहा था और साली रसारस रसीली थी। मेरे मित्र बातों के सौदागर होने के सबब प्रभाव सामने वाले पर गुरुआई भरा फौरन डाल देते थे। उनका साला चेली की तरह उनके प्रभाव में था, सो उन्होंने साले से कहा साफ शब्दों में कि उन्हें उसकी छोटी बहन जच गई है, सो उसे उनके कमरे में वह किसी बहाने भेजे। और समझदार पढ़े लिखे साले ने आचरण पर संदेह किए बगैर छोटी बहन को बड़े बहनाई के कमरे में भेज दिया। और हिमाकत यह कि ससुराल से लौटकर उन्होंने अपनी पत्नी को भी बतला दिया छोटी बहन विजय की वार्ता। फलतः इसके तीसरे ही दिन जेठ की दोपहरी में दुछत्ती के कमरे में झांकने पर बनारसी रसज्ञ जी ने देखा, क्या देखा? देखा उनकी पत्नी उन्हीं के तगड़े सुदर्शन कुवारे छोटे भाई का अधरपान कर रही है। पिपासा कूल, मुझे कहना चाहिए कि वह स्पोर्ट थे, चुपचाप दबे पांव छत से बैठक में आ रहे, मुझे कहना चाहिए कि वह साधु थे। सारे का सारा यह किस्सा उन्होंने सरल स्वभाव छुआ छल नहीं मुझे सुना दिया था। मुझे कहना चाहिए, ऐसे अल्हड़ बिल्हड़ आदमी ऐबों के बावजूद मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। कौन है बेऐब? बेऐब बस एक खुदा की जात है। खुदा जात बावन के हाथ की लेखनी भूल ही जाती है कि यह एटम युग है और राकेटों में कुत्ते और बंदर अंतरिक्ष की तरफ उड़ाए जा रहे हैं। अल्लाह के आसन की तरफ भूखने बंदर घुड़कियां दिखलाने के लिए। बनारस देखने के बाद चुनार वाली इन्फियारिटी कॉम्प्लेक्स मेरे मन से जाती रही। इस चर्चा में यह वर्णन हुआ है, चुनार में फिर भी लुके छिपे जुआ होता, लेकिन बनारस में तो बागों में, बंगलों में, बजड़ों पर एक तरह खुले आम जुआ होता। शराबें होती, सुंदरियां होती, वार नारी, जरा नारी। चुनार में तब दो ही चार वेश्याएं घोड़ चढ़ी रही होंगी, सो भी शहर के दूर, सराय के नजदीक। बनारस में पब्लिक परियां बीच शहर में शत शत की संख्या में प्रकट वेश्यालयों में थीं, और शत ही शत संख्या में अप्रकट वेश्यालयों में ऐसी रसीलियों की कमाई चुनार में संभ्रांतों की नहीं बदमाशों और ब्रिटिश टॉमियों की थी जो इन्हें लाल बीवी कहा करते थे। लेकिन बनारस की बिगड़ी औरतों की गहरी सही कमाई वहाँ के छिपे प्रकट रुस्तम मनचले बुद्धि और धनपतियों की थी। कलकत्ता, यद्यपि विश्वनाथ जी त्रिपाठी चुनार चले गए हैं, फिर भी चुनार ही के एक मुंशी जी उन्हीं के साथ रहते हैं। वह होंगे, मैं आपको अपने आदमी के साथ त्रिपाठी जी के स्थान पर सिंधी बगान में पहुंचवा देता हूँ। मुझे निराश हताश देख संभवतः मेरी दिक्कत समझकर सहृदय मूलचंद जी अग्रवाल ने कहा था, विश्वनाथ भाई के साथ चुनार के जो मुंशी जी रहा करते थे वह मेरे परिचित ही नहीं यजमान भी थे। उसी दिन उन्होंने चुनार सूचना भेज दी कि बेचन भाग आए हैं। एक ही हफ्ते बाद विश्वनाथ भाई भी चुनार से आ गए हैं थे। उन्हें मेरा वहाँ आना और रहना उनकी सुविधाओं में खलल डालना सुहाया नहीं था, फिर भी तिरस्कार उन्होंने नहीं किया। एक बासे वाले को कहकर मेरे खाने की व्यवस्था करा दी। जल्द ही उन्होंने मेरे लिए एक नौकरी भी तलाश की RL बर्मन कंपनी में। 1 रुपया रोज पर मैं उस कंपनी के दफ्तर के बाहर की तरफ तख्त पर बैठकर ग्राहकों के पते छपे फार्मों पर लिखता था। विश्वनाथ त्रिपाठी जब विश्वमित्र के लिए विज्ञापन ढूंढने निकलते तब अक्सर मुझे भी साथ लेते ताकि वह धंधा भी मैं समझ की खोपड़ी में ठूंस लूं। उन्हीं दिनों सन 1920 वाली मशहूर महाकांग्रेस हुई थी जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी। उसी कांग्रेस सेशन में असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ था। प्रस्ताव के विपक्ष में बोले थे मालवीय जी, मोतीलाल नेहरू जी, विपिन चंद्रपाल जी। कैसा जोश, कैसा खरोश, कैसे कैसे हृदय स्पर्शी भाषण हुए थे। इतनी इज्जत थी गांधी जी की। प्रेसिडेंट होने के बावजूद लाला जी महात्मा जी को पंखा झल रहे थे। राष्ट्रीय महासभा के उस क्रांतिकारी अधिवेशन के दर्शन ने मेरे मन में जैसे राष्ट्रीय नशा भर दिया था। प्राणों में एक सपना गौरव मुझे लगा, बनारस छोड़ राष्ट्रीयरण के इस मौके पर कलकत्ता में अकारण ही आया, मुझे पुनः बनारस ही लौट जाना चाहिए। बनारस में फिर भी मेरा व्यक्तित्व विकस रहा था, लेकिन अपार कलकत्ता में तो मैं कूलीगिरी करने काबिल भी कायाधारी नहीं था। कलकत्ता जाने पर, नौकरी तलाशने पर मुझे पता चला कि मैं किसी भी काम काबिल नहीं था। राष्ट्रीय भावना के साथ इस नाकाबिलियत ने भी कलकत्ता छोड़ने को मुझे कम उत्साहित नहीं किया। तब तक चुनार से बड़े भाई का पत्र विश्वनाथ भाई पर आया कि वह मुझे बनारस भेजने, टिकट के रुपए समय पर मिलने वाला उधार। तब तक मैं 1 मास के करीब RL बर्मन कंपनी में एड्रेस लिखने की नौकरी कर चुका था, लेकिन बिना नोटिस जो मैं छोड़ चलने पर आमदा हुआ तो कंपनी वालों ने भी तनख्वाह के नाम अंगूठा दिखा दिया। विश्वास करें, जिंदगी में वही मेरी एकमात्र नौकरी थी जिसका वेतन आज तक मुझे नहीं मिला है। फिर मेरे पिता की सुगति विचारिए, जो सारी जिंदगी पुजारी की नौकरी करते रहे लेकिन तनख्वाह के रुपए मंदिर मालिक सेठ ही के यहाँ समय पर लेने को छोड़ देते थे। लेकिन जब समय आया वह बीमार पड़े तब साहूकार ने रुपए न दिए, न दिए मेरी भगनी की शादी में, पिता दिवंगत हो गए, रुपए मिलते ही रह गए।